श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 12। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते खिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। यत् जो आदित्यगतम सूर्य प्रकाश में स्थित तेजह तेज जगत सारा संसार भासयते प्रकाशित होता है अखिलम संपूर्ण यत् जो चंद्रमसी चंद्रमा में यत् जो च भी अग्नौ अग्नि में तत् वह तेजह तेज विधि जानो मामकम मुझसे। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। अब आप अगर विचार करें, अभी तक भगवान बात कर रहे थे कि जो लोग अकृतात्मना है, जो लोग योगी नहीं है, वो समझ नहीं पाते हैं कि आत्मा किस प्रकार से इस जगत को भोग रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा। पता नहीं आप अभी तुरंत मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं, लेकिन थोड़ा सुनने का प्रयास, समझने का प्रयास करिए। जो लोग ज्ञान में ट्रेंड हैं, वो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार से भोग कर रहा है। अब भगवान ने एकदम से आप देखेंगे कि टॉपिक चेंज किया कर दिया, ऐसा लगता है एकदम से बोलने लगे कि ये जो चंद्रमा है और सूर्य है, अग्नि है, इसका तेज कहां से आ रहा है? मुझसे आ रहा है। आपको टॉपिक चेंज नहीं लग रहा? लेकिन टॉपिक चेंज नहीं है। अब हम बताएंगे कैसे टॉपिक चेंज नहीं है। पहले हम बलदेव विद्याभूषण जी की टीका को देखते हैं, फिर प्रभुपाद की टीका को देखेंगे। बहुत सुंदर, ये बहुत ही रहस्यमय बात है, इसमें लिंक क्या है। तो भगवान कह रहे हैं कि जब जीव इस जगत में रहता है तो भगवान ही उसके भोग की व्यवस्था करते हैं। बताइए, अगर सूर्य नहीं होता और चंद्रमा नहीं होता और अग्नि नहीं होती तो क्या हम खा पाते? खाना कितना बड़ा तृप्ति है। कैसे खाते बताओ? ना कोई फल होता, ना कोई सब्जी होती, और ना अगर जो आया है उसको हम पका नहीं पाते। तो इन अगर केवल तीन चीजों को ले लें, चंद्रमा का तेज, आप सबको पता है ना, चंद्रमा से ही सारी सब्जियों में रस आता है, ये पता है आपको बात, चंद्रमा से, और सूर्य उसमें शक्ति भरता है पौधों में। तो सूर्य और चंद्रमा और अग्नि की अगर हम बात करें तो हमारी एक प्रमुख इंद्रिय तृप्ति की बात करें, खाना, उसमें सहयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारे शरीर को पुष्टि मिलती है कि नहीं सूर्य से चंद्रमा से? समझ में आ रहा है? तो आप देखिए कि जीव इस जगत का भोग कर रहा है और इसकी व्यवस्था भगवान कर रहे हैं, इसलिए भगवान यहां बोल रहे हैं। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है वो समझता है कि भगवान ने चंद्रमा बनाया है, सूर्य बनाया है, और ये सब अग्नि है, सारे तत्व हैं, ताकि जीव हम सब लोग इस जगत का भोग कर सकें, क्योंकि ये हमारी इच्छा है। अब आप कनेक्शन समझ पा रहे हो? इसलिए बहुत जबरदस्त, बहुत ही रहस्यमय बात है। और मैं दूसरी बात यह है कि इन्हीं वस्तुओं का उपयोग करके हम मुक्त भी हो जाते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई वही अग्नि से तो हमने खिचड़ी पका के भगवान को भोग लगाया। तो यानी कि इन वस्तुओं से हम लोग मुक्त भी हो सकते हैं और हम लोग भोग में हम लोग बद्ध भी हो सकते हैं। तो ये इस श्लोक का रहस्य है। इस हम लोग जैसे कि जो गायत्री मंत्र में दीक्षित होते हैं वो सूर्य पे ध्यान करते हैं, तो कहने का अर्थ ये है कि सूर्य है, चंद्रमा है, जो प्रकृति है, ये दो कार्यों के लिए है। एक, जीव को इस जगत में भोग की सुविधा देने के लिए, और इस जीव को इस जगत से मुक्त होने की सुविधा देने के लिए। इससे पहले कि हम आगे जाएंगे, हम आपसे पूछेंगे, मैं पहले रिपीट एक बार फिर से बोलूंगा, फिर आप लोग ध्यान पूर्वक उसको बोलेंगे। इस जगत का उद्देश्य है भोग, जीव को भोग की सुविधा प्रदान करना, और साथ साथ जो जीव मुक्त होना चाहते हैं उनको मुक्ति की सुविधा भी प्रदान करना। तो अब आप बताइए इस जगत का उद्देश्य क्या है? देना, जो भी जीव है उन सभी को, जीव का मतलब कीट पतंग सबको, अपने हिसाब से भोग की सुविधा प्रदान करना, और साथ साथ मुक्ति की सुविधा प्रदान भी करना। अगर वो मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको ऐसी सुविधा देना कि वो मुक्त हो सके। पार्थ कृष्ण प्रभु, हाँ, जो जीव मुक्त होना चाहते हैं, बद्ध होना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो चंद्रमा है, सूर्य है और अग्नि है, ये तीनों ही चीजें हमें बद्धावस्था में भी मदद करती हैं, बद्ध होने के लिए भी, और हम लोगों एक सेकंड और हम लोगों को मुक्त होने में भी मदद करते हैं। हाँ, प्रश्न क्या है?
बद्ध होने के लिए तो आपने बता दिया,
हाँ,
चंद्रमा से जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया,
हाँ हाँ,
वो मिल रहे हैं।
यस,
मुक्ति के लिए कैसे,
मुक्ति के लिए कैसे करेंगे? देखिए, हाँ, तीनों का। अब इन्हीं वस्तुओं को हम जब भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। मैंने अभी उदाहरण दिया कि कल हमने खिचड़ी बनाई तो उसमें जो अग्नि थी, उस अग्नि का उपयोग करके, लकड़ी में जो अग्नि है उसका उपयोग करके हमने भगवान के लिए भोग अर्पण किया। वो अन्न कहाँ से आया? सूर्य की कृपा से आया। उसमें जो सब्जियां आई थी उसमें रस कहाँ से आया? चंद्रमा से आ गया। समझ में आ गया क्या? यही वस्तुएं अब हम जब कृष्ण की सेवा में करते हैं तो यही प्रकृति हमारी मदद कर रही है भगवान की सेवा में, हमको नियोजित करने के लिए वस्तुएं दे रही है। सेवा में तो हम लग रहे हैं, वो वस्तुएं हमसे वहां से मिल रही है। समझ में आ गया? तो ये दोनों चीजें हमको भगवान मतलब मुक्ति करने की सुविधा भी दे रहे हैं, बद्ध करने की। और इसी चीज को भगवान चार श्लोकों में बताएंगे, हम तो आज एक ही श्लोक की चर्चा करेंगे। तो यही भगवान बता रहे हैं कि सूर्य की ये तो बहुत ईजी है, चंद्रमा और जो अग्नि है उसका तेज उनसे आ रहा है, उसके बाद बोल रहे हैं, बस हमने यही समझा दिया आपको, बहुत सुंदर है। तो इन्हें बताया, अलग अलग प्रभाव बता रहे हैं कि एक इंटरेस्टिंग चीज और है इसमें। सूर्य को देखते ही सब लोग बिजनेस करना शुरू कर देते हैं कि नहीं? पढ़ने के लोग जाते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, किसान खेत में जाता है। तो ये सूर्य उनको एक प्रेरणा नहीं दे रही, दे रहा है कि चलो चलो अब अपने भोग के कार्य में लगो। अच्छा, अब इसको देखिए, जो भक्त हैं वो भी देखते हैं, अभी सूर्य उगने से 1.5 घंटा पहले में उठना है, भजन करना है, तो क्या हमको सूर्य प्रेरणा नहीं दे रहा? अब समझ में आ गया ना? चंद्रमा उगते होता है तो भक्त समझ जाता है अभी हमारा सोने का समय हो गया है, अब हम सोएंगे ताकि सुबह उठ के नाम जप कर लें। तो सूर्य और चंद्रमा हम लोगों को इस प्रकार से मदद कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं? दोनों का अंदर समझ में आ गया। मैं समझता नहीं कि आप लोगों को और समझाने की जरूरत है, आप समझ पाएंगे। हाँ, एक और चीज है कि सूर्य के प्रभाव से व्यक्ति को सुख और दुख भी प्राप्त होता है। सॉरी, समा कीजिएगा, सुख सूर्य के प्रभाव से नहीं होता है, अपने कर्मों की वजह से होता है, हम लोग को सुख और दुख प्राप्त होता है, लेकिन इसकी सुविधा जो है सूर्य और चंद्रमा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद बोल रहे हैं चंद्रमा का क्या प्रभाव होता है, जब चंद्रमा उदित होता है तो जितनी औषधियां हैं उनको रस प्राप्त होता है और दुख निवृत्ति होती है। कभी आप देखिए चंद्रमा को, पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, अगर आप देखें तो आपका मन बहुत शांत हो जाएगा, शीतल किरणें उसकी होती हैं। और अग्नि क्या करती है तो आप सब जानते हैं, हमारे पेट में अग्नि होती है, वो खाने को हजम करती है और बाकी जो अन्न इत्यादि उसको पकाती है। साथ साथ ये समझना चाहिए कि ये सब कुछ भगवान की विभूति है। अगर कोई व्यक्ति समझेगा तो भगवान के प्रति उसका आदर भावना होगी, कृतज्ञता होगी कि देखिए मैं पूरी तरह भगवान पर निर्भर हूं। जैसे महाराज बता रहे थे कि एक दिन मान लीजिए भगवान सूर्य को ना उगाएं तब, या फिर टैक्स भेज दें कि भाई इतने समय से हम आपको सूर्य की रोशनी दे रहे हैं, अब इसका बिल भरिए, तब व्यक्ति क्या कहेगा? नहीं भाई, हम तो नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग कृतज्ञता की भावना आती है कि मैं भगवान पे आश्रित हूं, केवल प्रकृति अपनी शक्ति से नहीं कर रही है, भगवान की शक्ति से सारा हो रहा है। इस समझ में आ गया? प्रभुपाद के तात्पर्य को देखिए, अज्ञानी मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह सब कुछ कैसे घटित होता है, लेकिन भगवान ने यहां पर जो कुछ बतलाया है उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ये तो आज आपको समझ में आ गया ना कि किस प्रकार से सूर्य चंद्र और अग्नि हमें भोग में भी लगा सकते हैं और हमको मुक्ति की तरफ भी मदद कर सकते हैं। ये अब कैसे मालूम चला आपको? वो तो है, लेकिन मैं बोल रहा हूं आपको ये समझ में कैसे आ रहा है, क्योंकि आप मुझे सुन रहे हैं। समझ आ गया? तो जब अब आप देखेंगे तब आप ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे, अग्नि है तो उसका उपयोग मुझे भगवान की सेवा में करना है, सूर्य है शीर्ष से जो मुझे शक्ति मिल रही है वो मैं भगवान की सेवा में लगाऊं। तो ये व्यक्ति जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो भगवत ज्ञान से युक्त होता है श्रवण करके, अभी हमने बोला था कि श्रवण करके तो व्यक्ति समझ पाता, मुख्य है श्रवण करना। ओके, लेकिन भगवान ने, हाँ कहां थे हम लोग, हाँ, लेकिन भगवान ने यहां पर जो कुछ बताया है उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सूर्य चंद्रमा अग्नि तथा बिजली देखता है, उसे यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो या चंद्रमा, अग्नि अथवा बिजली का तेज, ये सब भगवान से ही उद्भूत हैं। ये समझ में आ गया? तो उद्भूत का मतलब है वहीं से निकल रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक बल्ब पीली रोशनी दे रहा है, हाँ बहुत अच्छा उदाहरण है, पीली रोशनी मतलब सूर्य, और एक एलईडी बल्ब जो है वो हमारा सफेद रोशनी देता है, वो हो गया चंद्रमा, और एक हीटर लगा दीजिए तो हो गया वो अग्नि। तो आप देख लीजिए, हीटर, पीला बल्ब और सफेद बल्ब, इसको कहां से एनर्जी मिल रही है? नहीं 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 नहीं, पावर हाउस से, पावर हाउस से। जो पावर हाउस है वो आपको अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो पीला बल्ब है, सफेद बल्ब है और हीटर है या फिर रेफ्रिजरेटर है, कुछ भी कह लीजिए, वो सब पावर हाउस से आ रहा है, भले पावर हाउस आपको नहीं दिखाई पड़ रहा। तो उसी प्रकार से सूर्य चंद्रमा जिसका जो भी तेज है वो भगवान से आ रहा है। क्लियर है? ऐसा नहीं कि हम अपने आप सब कुछ हो रहा है। ओके, कृष्ण भावामृत का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बद्ध जीव को उन्नति करने के लिए काफी अवसर प्रदान करता है। जीव मूलतः परमेश्वर के अंश हैं और भगवान यहां पर इंगित कर रहे हैं कि जीव किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इन वस्तुओं का उपयोग, देखिए इस चीज को समझिए, अगर हम लोग भगवत गीता के श्लोक को नहीं सुनते तो हम सोचेंगे ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये सब मेरे एंजॉयमेंट के लिए, ये मेरे भोग के लिए है ना। फिल्म के गाने होते हैं ये, चंद्रमा की रातें ऐसे करके बहुत सुंदर ऐसी बातें होती हैं कि चंद्रमा निकल गया है और वो प्रेमिका को बुला रहे हैं। तो वही चंद्रमा लोगों को रोमांटिक भाव में प्रेरणा दे सकता है, लेकिन वही चंद्रमा को देख करके व्यक्ति सोचेगा ओ कृष्णचंद्र, कृष्ण का जो मुख है वो चंद्र से भी सुंदर है, चंद्र के समान सुंदर है, या इस प्रकार की भावना, सूर्य का तेज या कृष्ण का, चंद्रमा का तेज कृष्ण से आ रहा है, तो वही वस्तु से कृष्ण का स्मरण कराएगी। और जैसे कृष्ण का स्मरण होगा तो मुक्त का, वो बद्ध कहा रहा, वो तो मुक्ति के पथ पे आगे बढ़ गया। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इस जगत में, जब आप इस जगत में हैं, वस्तुओं को देखो और मेरा स्मरण करने का प्रयास करो कि ये मेरे द्वारा आ रहा है, कृतज्ञता का अनुभव करें। कृतज्ञता समझते हैं, थैंकफुलनेस, ग्रेटफुलनेस, ठीक है। जैसे आप समझिए, हम लोगों ने कल भक्तों को प्रसाद खिलाया, अब मान लो कोई व्यक्ति बहुत भूखा हो और आपने उसे बढ़िया प्रसाद खिलाया, और उसके पहले तो वो आप मान लीजिए सर्विंग कर रहे हैं तो भी वो कृतज्ञ हो जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा बना है, कृतज्ञ होता है। आपने भूखा है, आपने दिया उसको, वो कृतज्ञ हो जाता है। और जब मालूम चले कि फलाने व्यक्ति ने स्पॉन्सर किया था, इसने बनाया था, तो क्या उसके प्रति कृतज्ञता नहीं होती? तो हम लोग को कितनी आवश्यकता है ना, ठंड लग रही थी, अभी सूर्य उग रहा है, तो व्यक्ति इस प्रकार से कृतज्ञता का अनुभव करता है कि भगवान कितना कृपा कर रहे हैं। और अच्छा, स्पेशली वो प्रसाद अगर 40 रुपए का हो तो आप उतना कृतज्ञ नहीं होंगे, लेकिन फ्री में दिया जाए तो, वैसे आजकल लोग फ्री वाले के प्रति भी कृतज्ञ नहीं होते, लेकिन महसूस करता है भाई हमें कुछ भी नहीं किया, फ्री में प्रसाद मिल गया, भूख हमारी शांत हो गई। तो इस प्रकार से हम लोग सूर्य उगाने के लिए क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। चंद्रमा उगाने के लिए क्या करते? कुछ भी नहीं करते, और भगवान की व्यवस्था से हो रहा है। तो देखने वाला व्यक्ति कृतज्ञता का अनुभव करता है भगवान के प्रति। देखिए, मुख्यतः हमें भगवान के प्रति कृतज्ञ होना सीखना चाहिए, उनके हम दास हैं और भगवान किस प्रकार से हमारा पोषण करें, स्वीकार करें, उनकी हम सेवा करें। इस श्लोक में हम ये समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण सौर मंडल को प्रकाशित कर रहा है। सौर मंडल आप समझते हैं पूरा प्लैनेटरी सिस्टम। ब्रह्मांड अनेक हैं और सौर मंडल भी अनेक हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा लोक भी अनेक हैं, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है। भगवद गीता में कहा गया है कि चंद्रमा भी एक नक्षत्र है, नक्षत्राणाम अहम शशि। इसको प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं कि कभी कभी साइंटिस्ट बोलते हैं कि इस ब्रह्मांड में बहुत सारे सूर्य हैं और जितने भी तारे हैं वो सूर्य हैं, लेकिन वो तारे सूर्य नहीं हैं, उनको एक सूर्य से ही प्रकाश प्राप्त हो रहा है। ये वैदिक गणना के अनुसार है। सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण है। ये भी बहुत सुंदर है, यहाँ पे फोटो नहीं है, आध्यात्मिक जगत का फोटो है जिसमें भगवान श्री कृष्ण है गोलोक में और उनके दिव्य शरीर से दिव्य तेज निकलता है, उसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। उस ब्रह्म ज्योति से सूर्य का तेज आता है। पावर हाउस वाला एग्जाम्पल याद है ना, पावर हाउस और पीला बल्ब, और उसी ब्रह्म ज्योति से चंद्रमा का प्रकाश आता है। ये ध्यान देना चाहिए कि उस ब्रह्म ज्योति को हम लोग भौतिक आंखों से नहीं देख सकते, तो वो इस जगत में सूर्य के प्रकाश के रूप में परिवर्तित होता है। और कुछ लोग कहते हैं कि सूर्य ठंडा हो जाएगा, लेकिन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसका स्रोत जो है, जो ब्रह्म ज्योति है, वह पूरी तरह से अशेष है, अशेष तेज, उसमें कभी भी कमी नहीं आ सकती। ये भी बात समझ लेना चाहिए, ठीक है। सूर्योदय के साथ ही मनुष्य की कार्यकलाप प्रारंभ हो जाते हैं। वे भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं और फैक्ट्रियां चलाने के लिए अग्नि जलाते हैं। अग्नि की सहायता से अनेक कार्य किए जाते हैं। और आप जानते हो कि पहले जमाने में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, उससे भी क्या करते थे, यज्ञ करते थे। तो आप देख रहे हैं कि आजकल की सभ्यता में उन्हीं वस्तुओं का उपयोग केवल इंद्र तृप्ति के लिए हो रहा है, और पहले की सभ्यता में उन्हीं वस्तुओं का उपयोग भगवत सेवा के लिए होता था। सिंपल है, हमारे मंदिर में भी देखिए 7-8 बजे जो है कुकिंग चालू हो जाती है, अग्नि का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन सीधी सीधी बात है कृष्ण की सेवा के लिए। और कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में भी हो, घर पे भी रहे, तो भी उसे अग्नि जलानी पड़ती है कि नहीं 6-7 बजे, लेकिन अगर घर में ठाकुर जी को भोग लगे तो वही अग्नि जो है वो कृष्ण की सेवा के लिए उपयोग हो रही। एकदम क्लियर है कि नहीं? ओके, पूरा सब पढ़ेंगे फिर उसको रुक जाएंगे। ओके, अतएव सूर्योदय अग्नि तथा चंद्रमा की चांदनी जीवों को अत्यंत सुहावने लगते हैं। क्यों लगते हैं सुहावने? क्योंकि उनसे उनको भोग की सुविधा प्राप्त होती है। उनकी सहायता के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। ये बद्ध जीवों के बारे में बात हो रही। अतएव यदि मनुष्य यह जान ले कि सूर्य चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश तथा तेज भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत हो रहा है, तो उसमें कृष्ण भावनामृत का सूत्रपात हो जाता है, यानी वो कृष्ण भावना भावित होना शुरू हो जाता है। क्यों हो जाता है पार्थ कृष्ण प्रभु, क्यों शुरू हो जाएगा वो? अगर वो समझ लेगा कि सूर्य चंद्रमा और अग्नि का प्रकाश का तेज है वो कृष्ण से आता है, तो कृष्ण भावना भावित होना शुरू कैसे हो जाएगा? यस, उसको समझ जाएगा कि भगवान से आ रही है, मुझे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात। चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियां पोषित होती हैं। चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंदप्रद है कि लोग सरलता से समझ सकते हैं कि वे भगवान कृष्ण की कृपा से ही जी रहे हैं। यही बात हम समझा रहे थे, अब इसे समझाने की जरूरत नहीं है। उनकी कृपा के बिना ना तो सूर्य होगा, न चंद्रमा, न अग्नि और सूर्य। चंद्रमा तथा अग्नि के बिना हमारा जीवित रहना असंभव है। बद्धजीव में कृष्ण भावनामृत जगाने के ये ही कतिपय विचार है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बद्धजीव कभी सोचता ही नहीं है हम लोग कौन हैं। अगर हमने भगवद गीता में ना सुना हो तो कभी जिंदगी में नहीं सोचने वाले। और इसीलिए हमारे तथाकथित रूप से जो हमारे रिश्तेदार हैं वो बड़े परेशान रहते हैं कि भाई ये सब बातें क्यों कर रहा है, क्योंकि वो कुछ सोचना नहीं चाहते, आंखें बंद किए रहना चाहते। ये स्थिति है। जैसे वही हम कल वाला उदाहरण देंगे, जब ट्रेन आ रही थी और 300-400 लोग वहां पे खड़े हुए थे जो कट गए, कोई व्यक्ति चिल्लाता रहे, भाई ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है, अरे अरे देखो छोड़ ट्रेन का क्या देखना है, पटाखा देखो, पटाखा देखो। और पटाखा फोड़ते फोड़ते उनका ही काल आ गया। तो अभी देख रहे हैं कि इस प्रकार से लोग जब भगवान की भक्ति करने चालू करते हैं तो आपके परिवार वाले जरूर बोलेंगे करने की क्या जरूरत है, क्योंकि अकृतात्मना, क्योंकि उनकी इंद्रियां शुद्ध नहीं हुई। तो हमने ये सीखा आज कि भगवान से ही चंद्रमा का तेज आता है, सूर्य का तेज आता है, अग्नि का तेज आता है, और ये बद्ध जीवों को मदद कर रहा है भोग में लिप्त होने के लिए, और जो बुद्ध कृष्ण भावना भावित जीव हैं उसको वो भक्ति में मदद करते हैं। और इसके द्वारा व्यक्ति, आगे के 3 और श्लोक हैं इसमें भगवान बता रहे हैं किस प्रकार से वो जीवों की मदद करते हैं, बद्ध होने के लिए भी और मुक्त होने के लिए भी। कोई प्रश्न है? स्टॉप हियर।